सुषमा देवी के कमरे में एक अलग ही ठहराव था, ऐसा ठहराव जो सुबह के उस तनाव से बिल्कुल अलग लेकिन उसी की परछाई लिए हुए था। कमरे की खिड़कियां आधी खुली थीं, बाहर से आती धूप की पतली धारें पर्दों को चीरती हुई अंदर गिर रही थीं। दीवार के पास रखे पुराने रेडियो से भजन की धीमी सी आवाज गूंज रही थी, वो भजन जिनमें शोर नहीं होता, बस शब्दों का वजन होता है। रघुपति राघव राजा राम, स्वर में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई आधुनिक सजावट नहीं, बस सादा ठहरा हुआ सुकून। सुषमा देवी पलंग पर पीठ टिकाए बैठी थीं, आंखें आधी मूंदी हुई, जैसे सुन नहीं रही हों बल्कि याद कर रही हों। उनके पैरों के पास एक नौकरानी बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथों में तेल की हल्की सी चमक और उंगलियों में अनुभव। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे उनके पैर दबा रही थी। सुषमा देवी ने आंखें खोली। हमारे जमाने के भजन, उन्होंने हल्की आवाज में कहा, आजकल के गीतों जैसे नहीं होते थे, उनमें दिखावा नहीं होता था, हर शब्द में श्रद्धा होती थी, सब्र होता था। दासी ने सिर हिलाया, उसके होंठ खुले नहीं लेकिन कान पूरी तरह खुले थे। अब सब कुछ तेज हो गया है, सुषमा देवी बोली, बातें भी रिश्ते भी, किसी के पास रुकने का वक्त ही नहीं। रेडियो पर भजन आगे बढ़ गया, कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई, रत्ना देवी अंदर आईं। उनकी चाल में वही संयम था लेकिन चेहरे पर सुबह वाला बोझ अब भी साफ छलक रहा था। वो बिना कुछ कहे सुषमा देवी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गईं। दोनों के बीच कुछ पल तक कोई संवाद नहीं हुआ, बस भजन, टिक टिक और बीती बातों की खामोशी। सुषमा देवी ने एक नज़र उनकी ओर डाली, अब भी मन भारी है? आवाज में सवाल कम, पहचान ज्यादा थी। रत्ना देवी ने हल्की सांस ली। मन कब हल्का होता है आजकल दीदी, उन्होंने धीमे से कहा, सुबह की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। सुषमा देवी ने दासी की ओर देखा, चाय ले आओ, उन्होंने कहा। रत्ना देवी तुरंत बोली, नहीं नहीं अभी मत मंगवाइए, ऐसे ही बैठ लेते हैं। लेकिन सुषमा देवी ने हाथ के इशारे से उनकी बात काट दी, बैठना तभी अच्छा लगता है जब हाथ में चाय हो, जाओ। दासी बिना एक शब्द बोले उठी और कमरे से बाहर चली गई। कमरे में फिर वही ठहराव लौट आया। रत्ना देवी ने रेडियो की ओर देखा, ये भजन, उनकी आवाज रुक गई। याद दिलाते हैं, सुषमा देवी ने कहा। रत्ना देवी ने सिर हिलाया, बहुत कुछ, वो दिन जब घर में आवाजें ऊंची नहीं होती थीं, जब बच्चों को समझाने के लिए आवाज नहीं निगाह काफी होती थी। सुषमा देवी की भौहें तन गई, आजकल निगाहों की कीमत ही नहीं रही, उन्होंने कहा। सब अपनी अपनी बात लेकर खड़े हैं, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। विशु, रत्ना देवी ने नाम लिया, फिर रुक गई। सुषमा देवी समझ गई, वो बदल रहा है, उन्होंने सीधा कहा, और बदलाव सबसे पहले माँ को ही चुभता है। रत्ना देवी की आंखें भर आईं। वो कभी यूं उठकर नहीं जाता था, उन्होंने कहा, न मेरे सामने न किसी के। अब उसके सामने कोई और प्राथमिकता है, सुषमा देवी ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन ये तरीका, रत्ना देवी की आवाज कांप गई, सबके सामने श्यामली को यूं बैठाना फिर उठकर चले जाना। सुषमा देवी ने आंखें बंद कर ली। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, उन्होंने कहा, हम सब कहीं ना कहीं अपनी जगह ढीली छोड़ चुके हैं। रत्ना देवी ने चौंक कर उनकी ओर देखा, आप कहना क्या चाहती हैं? सुषमा देवी ने आंखें खोली। घर नियमों से चलता है रत्ना, और जब नियम टूटते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए सख्ती चाहिए या समझदारी। आज तक हमने सिर्फ समझदारी दिखाई है, तो अब? रत्ना देवी ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुषमा देवी कुछ पल चुप रहीं। रेडियो पर भजन खत्म हो चुका था, अब बस सन्नाटा था। अब संतुलन चाहिए, उन्होंने कहा, न ज्यादा दबाव न ज्यादा छूट। तभी दासी चाय की ट्रे लेकर लौट आई, दो कप, हल्की भाप उठती हुई। उसने चुपचाप ट्रे मेज पर रखी और फिर पैरों की ओर लौट आई। सुषमा देवी ने चाय का कप उठाया। कभी कभी, उन्होंने कहा, घर को बचाने के लिए किसी एक को बुरा बनना पड़ता है। रत्ना देवी ने कप की ओर देखा, फिर सुषमा देवी की ओर, और अगर वही घर टूट जाए? सुषमा देवी ने चाय की चुस्की ली। घर टूटता नहीं है रत्ना, उन्होंने कहा, घर बस अपनी शक्ल बदलता है। दोनों औरतें चुप हो गईं। चाय ठंडी होने लगी। रेडियो बंद था और कमरे में फैला वो ठहराव अब किसी शांति का नहीं बल्कि आने वाले फैसलों का संकेत था। रत्ना देवी ने कप मेज पर रख दिया। चाय की भाप अब आंखों में चुभने लगी थी, या शायद वो शब्द थे जो अभी कहे जाने वाले थे। सुषमा देवी ने उनकी बेचैनी देखी। तुम भी महसूस कर रही हो, है ना, उन्होंने धीरे से कहा। ये सब यूं अचानक नहीं हुआ, घर का माहौल, विशु का बर्ताव, उसका यूं सबके सामने खड़ा हो जाना, ये सब उस लड़की के आने के बाद ही शुरू हुआ है। रत्ना देवी ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। उनकी उंगलियां कप के किनारे से मट गई। मैं किसी पर बिना वजह उंगली नहीं उठाती, सुषमा देवी बोली, आवाज में ठंडा यकीन था।
लेकिन माँ होने के नाते ये देखना हमारा फर्ज है कि कौन हमारे घर की जड़ें हिला रहा है। श्यामली, रत्ना देवी ने नाम लिया जैसे खुद को ही समझा रही हो। वो तो शांत है, ज्यादा बोलती भी नहीं। सुषमा देवी ने हल्की हंसी हंसी, वो हंसी जिसमें मिठास नहीं अनुभव था। शांत लोग ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं, उन्होंने कहा। शोर करने वाले दिख जाते हैं रत्ना, लेकिन जो बिना बोले दिल में जगह बना ले वही असली बदलाव लाते हैं। रत्ना देवी का चेहरा उतर गया, उन्हें याद आया विशु का देर से आना, उनसे नजरें चुराना और आज सुबह सबके सामने वो साहस। वो पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने धीरे से कहा। वो मुझसे हर बात साझा करता था क्योंकि तब उसकी सोच पर सिर्फ घर का असर था, सुषमा देवी बोली। अब किसी और का है, उन्होंने थोड़ा झुक कर कहा। अगर तुम चाहती हो कि सब पहले जैसा हो जाए तो तुम्हें जड़ पर हाथ रखना होगा। जड़? रत्ना देवी की आवाज कांप गई। हाँ, सुषमा देवी ने साफ कहा, उस लड़की पर। उसे अपने काबू में लेना होगा, उसे ये महसूस कराना होगा कि ये घर किस नियम से चलता है। रत्ना देवी की आंखों में द्वंद्व साफ था, लेकिन साथ ही एक चुभन थी। माँ होकर उन्होंने धीमे से कहा, मैं अपने बेटे को बदलते नहीं देख सकती। सुषमा देवी ने सिर हिलाया। तो फिर कमजोर मत पड़ो, उन्होंने कहा। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए किसी को सही जगह दिखानी पड़ती है। रत्ना देवी चुप हो गई। अब उनके मन में सवाल नहीं थे, बस एक दिशा बन रही थी, और उसी दिशा में पहली बार श्यामली का नाम एक खामोश खतरे की तरह उनके दिल में बैठ चुका था।